सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धे व्युत्थसयले अर्जत्तबहित्तबन्धनुं मुके भक्तिये अहं नमः पुनो पुनो बंधनम वोच्छम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 14वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणाखंड, उसमें भी बंधनीय नियोग द्वार चल रहे हैं और उसमें प्रत्येक शरीर वर्गणा की बात चल रही थी, प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा। हम पृष्ठ संख्या 77 पर आ गए, 77। अब यहाँ पूछते हैं, देखो नीचे शंका लिखा है ना, वहां से लेते हैं। वैक्रियक शरीर के विसरसोपचय से आहारक शरीर का विसरसोपचय असंख्यात गुणा है। यह बात किसकी चल रही है? प्रत्येक शरीर वर्गणा के, तो उसमें निगोद रहित शरीरों की बात है। पहले अयोगी में अंतिम समय में घटित किया और उसमें भी क्षपित कर्मवंशिक वाले को पहले में पहले लिया, क्योंकि जघन्य से शुरू करके एक एक प्रदेश अधिक वाले जो सारे विकल्प है उसको बता रहे थे। तो अयोगी के फिर द्विचरम त्रिचरम इस तरह से करते करते सयोगी के पहले समय तक आ गए, उसके बाद नारकियों को लिया। इसलिए अभी प्रश्न पूछते हैं कि वैक्रियक शरीर के विसरसोपचय से आहारक शरीर का विसरसोपचय असंख्यात गुणा है, इसलिए प्रमत्त संयत गुण स्थान में आहारक तेजस और कारमान शरीर के 6 पुंज ग्रहण करके प्रत्येक शरीर वर्गणा एक जीव संबंधी क्यों नहीं कही? प्रश्न ख्याल में आए, ये नारकी के बदले उसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि वैक्रियक से आहारक में असंख्यात गुणा होते हैं। विसरसोपचय, समाधान, नहीं, क्योंकि अंतिम समयवर्ती नारकी को छोड़कर तेजस और कारमन शरीर का अन्यत्र उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध नहीं होता। वो भले वहाँ विसरसोपचय अधिक हो, परंतु यहाँ कारमन द्रव्य तेजस द्रव्य इसमें मैक्सिमम है। जहाँ पर तेजस और कारमन शरीर जघन्य होते हैं, वहाँ पर प्रत्येक शरीर वर्गणा सबसे जघन्य होती है। इसलिए हमने वो अयोगी के अंतिम समय भी उसी लिए लिया था। और जहां पर इनके उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध होते हैं, वहां पर प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्कृष्ट होती है। परंतु प्रमत्त संयत मनुष्यों के प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्कृष्ट नहीं होती, क्योंकि उनके गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा और अधस्थिति गलना के द्वारा तेजस और कारमन शरीर का द्रव्य गलित हो जाता है। यानी भले वो गुणित कर्मांशिक से भी क्यों ना आया हो, फिर भी उसका इतना द्रव्य गलित हो चुका नीचे का। इसलिए यदि कहा जाए कि गलित हुए तेजस और कारमन शरीर के द्रव्य से आहारक शरीर की द्रव्य वर्गणाएं बहुत होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है। यानी भले वो कारमान और तेजस निकल गए, परंतु आहारक शरीर की वर्गणा बहुत ज्यादा ले ली उसने, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यह उनके अनंतवे भाग प्रमाण होता है। अतः प्रमत्त संयत गुणस्थान में प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्कृष्ट नहीं कही। जघन्य से लेकर हमने उत्कृष्ट तक देखना है, तो ये नारकी को लिया था। यहां पर कर्मस्थिति काल के भीतर संचित हुए 8 प्रकार का कर्म प्रदेश समुदाय की कारमन शरीर संज्ञा है। कर्मस्थिति काल यानि अभी उत्कृष्ट जो सत्तर कुड़ाकुड़ी सागर है तो वो कर्मस्थिति काल है, तो उसके भीतर जो आठ प्रकार के कर्म प्रदेशों का संचय हुआ है उसको कर्मांड शरीर कहते हैं। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट काल लिया, कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ली वहाँ। अब कहते हैं 66 सागर काल के भीतर संचित हुए नौ कर्म प्रदेश समुदाय की तेजस शरीर संज्ञा है। ये 66 सागर क्यों लिया? तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कहना उसको, जैसे कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है अभी हमने देखा था ना, 70 कोड़ाकोड़ी सागर, तो इसकी कितनी होती है? 66 सागर, कोड़ाकोड़ी नहीं लगाया बीच में। नौ कर्म प्रदेश कह दिया, देखो कर्म को छोड़कर अन्य जो चार शरीर है उसको नौ कर्म कहते हैं। तेजस शरीर संज्ञा है। 33 सागर काल के भीतर संचित हुए नौ कर्म प्रदेश समुदाय की वैक्रियक शरीर संज्ञा है। ये 33 सागर अधिक से अधिक वैक्रियक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति बताई है यहाँ पर। क्षुल्लक भव ग्रहण काल से लेकर तीन पल्य काल के भीतर संचित हुए नौ कर्म प्रदेश समुदाय की औदारिक शरीर संज्ञा है। औदारिक शरीर की जघन्य से उत्कृष्ट तक स्थिति कितनी होती है उसकी बताए। जघन्य क्षुद्र भव क्षुल्लक भव, ऊपर लिखा ना, खुद्दा लिखा है, खुद्दा भव गण। एक्चुअली क्षुद्र भवन कहे, हम अभी तक तो क्षुद्र भव कहते थे, क्षुल्लक भी कहते होंगे पता नहीं। या तो उसके समान होना चाहिए, क्षुद्र के बदले क्षुल्लक आया होगा या गलती से आया होगा। तो तीन पल्य काल तक की उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। और अंतर्मूर्त काल के भीतर संचित हुए नौ कर्म प्रदेश समुदाय की आहारक शरीर संज्ञा है। ये अलग अलग शरीरों की स्थिति उत्कृष्ट कितनी हो सकती है उसकी बात यहाँ की है। इसलिए नारकी जीव के अंतिम समय में ही उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए, यानी उत्कृष्ट अधिक से अधिक जिसके तेजस कर्मण वगैरह है वो कौन सा जीव है, तो ये गुणित कर्मांशिक वाला लिया हमने नारकी का अंतिम समय विशेषार्थ। बीच में सारे ही विकल्प होंगे अलग अलग, बीच में होंगे, बीच में जो है ना उसमें पुनरुक्त के साथ उसको लगा लेना, क्योंकि हमने एक एक से बढ़ते हुए देखे थे। बीच के जितने सारे विकल्प हैं उसमें उसकी समानता है, उसमें देव के भी आ जाएगी बीच में, देव को भी कहाँ लिया था अलग से, हाँ तो प्रत्येक शरीर वर्गना में, और वो भी एक जीव की अपेक्षा लिया है, नाना जीवों की यानी पृथ्वी का एक अग्नि का एक की बात की नहीं अभी, उनको तो एक समूह रूप से लेना है, एक एक जीव का अलग नहीं लेना है, एक बंधन में बंधे हुए की बात है वहां पर। अब यहाँ विशेषार्थ देखेंगे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखो यहाँ पर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना का विचार करते हुए वह एक जीव की अपेक्षा, पहले अभी हम एक जीव की अपेक्षा देख रहे हैं, जघन्य और उत्कृष्ट किस जीव के होती है इस बात का विस्तार से निरूपण किया गया है। जिन शरीरों का स्वामी एक ही जीव होता है और उनके आश्रय से अन्य जीव नहीं उपलब्ध होते, ये बात महत्व की है ना, उन शरीरों के समुदाय का नाम प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा है। शरीरों का समुदाय, अभी एक जीव है उसके औदारिक भी है वैक्रियक भी है, सॉरी औदारिक भी है तेजस भी है कर्मण है, तो शरीरों का समुदाय हुआ। आगम में ऐसे आठ प्रकार के जीव बतलाए हैं जिनके शरीरों के आश्रय से अन्य जीव नहीं रहते, हमने बहुत बार देखा ना इसको। वे आठ प्रकार के जीव ये हैं, कौन कौन से उसको बताते हैं, केवली जिन, देव नारकी यानी वैक्रिक शरीर वाले, केवली में परम औदारिक शरीर जिसको हम कहते हैं, आहारक शरीर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक। यहाँ सर्वप्रथम यह देखना है कि इन जीवों में जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का स्वामी कौन जीव है और उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का स्वामी कौन जीव है। वो जीव करना जो दिख रहा है कौन जीव है। प्रत्येक वनस्पति का एक भी ले सकते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक क्षपित कर्मांशिक और दूसरे गुणित कर्मांशिक। जो क्षपित कर्मांशिक जीव होते हैं उनके कर्म वर्गणाएं उत्तरोत्तर ह्रस्व होती जाती, ह्रस्व यानी कम होती है क्योंकि निर्जरा हुई है ना, बहुत बहुत अधिक कर्म खिपाया है तो उसको क्षपित कर्मांशिक कहते हैं। और अयोगी के अंतिम समय में वे सबसे न्यून होती है, इसलिए अयोगी जिनके अंतिम समय में प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा सबसे जघन्य होती है, यानी उसमें भी जो क्षपित कर्मांशिक रूप से आया हुआ जो है और अयोगी के अंतिम समय में है उसके मिनिमम पॉसिबल द्रव्य वर्गणा है। यहाँ इस वर्गणा से औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर तथा इनके विसरसोपचय, इन छह पुंजों का ग्रहण होता है। जब प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा कहेंगे अयोगी की तो यहाँ ये छह पुंज उसमें आते हैं। गुणित कर्मांशिक जीव वे कहलाते हैं जिनकी कर्म वर्गणाएं उत्तरोत्तर महापरिणाम वाली होती जाती है और 33 सागर की आयु वाले नारकी जीव के अंतिम समय में वे सबसे उत्कृष्ट होती है। ये हमने इसके बहुत डिटेल में देखा था कौन सा जीव कहाँ कहाँ घूम के कहाँ वो अंत में त्रस्त पर्याय के त्रस्त स्थिति के अंत की ओर नारकी होता है उसके अधिक होते हैं। इसलिए नारकी जीव के अंतिम समय में प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा सबसे उत्कृष्ट होती है। अयोगी में प्रत्येक शरीर में छह पुंज हमने औदारिक के दो, तेजस कारमान के दो दो देखे थे। नारकी में कौन से देखेंगे? वैक्रेक के दो और तेजस कारमान के दो दो। यहाँ इस वर्गणा से वैक्रेक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर तथा इनके विसरसोपचय, इन छह पुंजों का ग्रहण होता है। मध्य में ने जो मध्यम विकल्प है, मध्य में इस वर्गणा के अनेक विकल्प हैं जिनका निर्देश मूल में किया ही है। मूल में किया हमने देखा था ना, एक प्रदेश ज्यादा है विसरसोपचय में बढ़ाते जाना, फिर औदारिक में एक बढ़ाना, फिर विसरसोपचय में बढ़ाना, तो ये बहुत सारे भेद हमने देखे। यहाँ जघन्य वर्गणा, एक परमाणु अधिक जघन्य वर्गणा, दो परमाणु अधिक जघन्य वर्गणा इत्यादि क्रम से वृद्धि करते हुए उत्कृष्ट वर्गणा लाने की विधि जिस प्रकार मूल में बतलाई गई है उस प्रकार उसे जान लेना चाहिए। पहले अंतिम समयवर्ती अयोगी जिनके ही नाना जीवों का अवलंबन लेकर जघन्य वर्गणा में परमाणुओं की वृद्धि की गई है, ये कल हमने देखा ना विस्तार से। इसके बाद उपांत्य समयवर्ती अयोगी जिनका आश्रय करके वृद्धि कही गई है। अंतिम समय में हमने देखा था एक एक परमाणु से वृद्धि होते बिना योग के वृद्धि के, उसके बाद योग की वृद्धि से भी उसमें जो कुछ वृद्धि पॉसिबल है उसको भी देखा था। अब वो तो अंतिम समय की बात है, फिर उपांत समय की बात की थी। इसके बाद उपांत समयवर्ती अयोगी जिनका आश्रय करके वृद्धि कही गई है और इस प्रकार पीछे लौटकर प्रथम समयवर्ती सयोगी जिन तक आकर वृद्धि का क्रम दिखलाया गया है। इसके बाद देव और देवों के बाद नारकी जीवों को स्वीकार करके, ये बीच में जो कुछ पॉसिबल है वो सब लेना, वहां प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा अपने उत्कृष्ट विकल्प तक उत्पन्न की गई है। प्रथम समयवर्ती सयोगी जिनके बाद, अब बीच बीच में कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। आहारक शरीर, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों का ग्रहण इसलिए नहीं किया गया, यहाँ क्यों नहीं किया उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा इनके जो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है उसका ग्रहण मध्यम विकल्पों में आ जाता है। मैंने बताया ना वो पुनरुक्त में आ जाएगा। सहयोगी के पहले समय तक हमने लाया है, बीच में जो कोई पॉसिबल विकल्प है उसमें ये एक जीव की अपेक्षा आहारक, पृथ्वीकायिक, अग्निकायिक आदि की बातें उसी के बीच में वो मध्यम विकल्पों में वो उनके भी विकल्प वहाँ हो जाते हैं इस हाँ? नहीं सहयोगी के बाद नहीं लेना। देखो उन्होंने ऐसा लिखा कि सहयोगी के बाद उसका ग्रहण इसलिए नहीं किया। नहीं सहयोगी के जो बीच वाले हैं ना विकल्प उसमें आएंगे। देखो जगन्य में जगन्य हमने किसको देखा? अयोगी को देखा, ये मिनिमम पॉसिबल अयोगी को देखा। अब ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पर हमने सहयोगी के देखे। इसी के बीच में आहारक के है, पृथ्वीकाय के, अग्निकाय के, एक एक जीव की अपेक्षा जो है वो इसी के बीच में आ जाते हैं, इसलिए अलग से उनका ग्रहण नहीं किया। अलग से उसके बाद सहयोगी के बाद उनका नहीं बताया है। सहयोगी के बाद तो वो नारकियों को लिया। कौन से किसमें बाद इसको नहीं लिया? ये पूरा वाक्य देखना, सहयोगी के बाद इसको नहीं लिया है क्योंकि मध्य में उसका ग्रहण हो जाता है, बाद में लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बीच में आ चुके सब। हमने अयोगी से सहयोगी के पहले समय तक के जो विकल्प देखे उसी में देखो कौन कौन से आ गए। उसमें आहार का आ गए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, सब इसी में आ गए। सहयोगी के बाद किसको ग्रहण कर सकते हैं? तो देवों को, नारकियों को, और फिर नारकी के उत्कृष्ट तक। देखो ऊपर आई थी बात, देखो अभी जो हमने पढ़ा ना, नहीं डायरेक्ट उत्कृष्ट नहीं, उसमें भी वो बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट बताएंगे। देखो देखो कल हमने देखा ना सहयोगी के, छिहत्तर पृष्ठ पर देखो, छिहत्तर में भी उसके भी पहले अल्पभूतव बताया था उन्होंने। ये अल्पभूतव के भी पहले आना चाहिए ना, एक मिनट है मैं बताती हूँ। 70 अयोगी के अंतिम समय की वर्गणा, सहयोगी ये बीच में उन्होंने सारे अल्पभूत वो कहे ना। देखो यहाँ 76 पृष्ठ पर देखना, पहले में पहले हमने सहयोगी के पहले समय तक आए हम, उसके बाद ये तीसरी लाइन पढ़ेंगे अभी हम। अब अन्य जीव के द्वारा वैक्रिय शरीर के विसरसोपचय पुंज में एक परमाणु अधिक करने पर सहयोगी जिनके प्रथम समय के उत्कृष्ट द्रव्य के ऊपर एक परमाणु अधिक होकर अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। या ये ख्याल में आए? तो वैक्रिक वाला देव भी हो सकता है, कोई अन्य नारकी भी हो सकता है। वो सातवें पृथ्वी वाला नहीं समझना पहले में, पहले बीच वाले जो अन्य विकल्प है मध्यम विकल्प को ही है ये बात। इस प्रकार एक एक परमाणु अधिक के क्रम से वैक्रिक शरीर के विसरसोपचय पुंज, पहले विसरसोपचय पुंज बढ़ाएंगे, फिर वैक्रिक शरीर का एक एक परमाणु बढ़ाएंगे, फिर विसरसोपचय बढ़ाएंगे, इस तरह से। देखो यहाँ लिखा उसके जो पैराग्राफ पढ़ा ना हमने उसके अंतिम लाइन, इस प्रकार उक्त विधि से अपने उत्कृष्ट द्रव्य के प्रमाण को प्राप्त होने तक वैक्रिक शरीर के दो पुंज बढ़ाने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? देव और नारकियों के सारे मध्यम विकल्प प्राप्त हो रहे हैं अभी इसमें। सहयोगी के बाद इतने सारे लिए ना, कितने हैं वो? एक एक परमाणु बढ़ता है विसरसोपचय का तो जीव राशि से अनंत गुना, फिर वैक्रिक का परमाणु बढ़ेगा, फिर विसरस उपचय के जीवराशि से अनंत गुणे इतने विकल्प हो गए, फिर वैकिरेक का एक परमाणु बढ़ेगा। इस तरह से मैक्सिमम तक लाया। नीचे देखते हैं, अनंतर अपने विसरस उपचय के साथ वैकिरेक शरीर के द्रव्य को उत्कृष्ट करके पुनः तेजस शरीर के विसरस, जैसे हमने अयोगी में देखा था वैसे यहाँ पर भी है, तेजस का एक एक बढ़ाना विसरस उपचय का और उसका ओरिजिनल, फिर कारमांड में बढ़ाते जाना, लास्ट में जो उत्कृष्ट है वो नारकी के सातवें नरक के नारकी के अंतिम समय में वो सिद्ध हो जाएगा। अभी हम फिर आते अपने विषय पर, यानी मध्यम विकल्प में सारे जो देवनारकी वैकिरेक वाले सारे मध्य विकल्प में लिए सयोगी के बाद, हेलमे ना जघन्य अयोगी को लिया अंतिम समय, एक एक समय नीचे उतर कर सयोगी के पहले समय तक लाया, उसके उसी के बीच में आहारक के पृथ्वी अग्नि जल वायु सबके आ गए बीच में एक जीव की अपेक्षा वाले, और उसके बाद वैकिरेक के अनेक मध्यम भेद देखे, उसमें देव और नारकी दोनों आए, और उसमें उत्कृष्ट भेद कौन सा है तो नारकी का अंतिम समय सातवें नरक के नारकी का, वो भी गुणित कर्मांशिक वाला। अब यहाँ पढ़ते हैं 79 पृष्ठ पर चलिए अपनी बात। ये हमने ये पढ़ा कि हाँ वो विकल्प उसमें आ जाते हैं, एक जीव की अपेक्षा इनके जो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है उसका ग्रहण मध्यम विकल्पों में आ जाता है, ये हमने पढ़ा था। यहाँ जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा लाते समय प्रत्येक स्थल पर गुणकार मिला ना, द्रव्य वर्गणा क्या कहना चाहते हैं? द्रव्य वर्गणा वह वर्गणा हुआ है, अच्छा वो निकाल देना, प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा बराबर। यहाँ जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा लाते समय प्रत्येक स्थल पर गुणकार सब जीवों से अनंत गुणा बतलाया गया है, सो यह कथन संभव सत्य की अपेक्षा से किया गया जानना चाहिए। ये बात पहले भी उन्होंने समझाई थी ना शंका समाधान, क्योंकि प्रत्येक जीव के औदारिक शरीर आदि जघन्य वर्गणा से अपनी औदारिक शरीर आदि उत्कृष्ट वर्गणा व्यक्त रूप से सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं के समुच्चय रूप नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं? किसी जीव के औदारिक शरीर की जो जघन्य वर्गणा है वो उसके उत्कृष्ट वर्गणा जो व्यक्त रूप है सब जीवों से अनंत गुणे परमाणु रूप से समुच्चय रूप नहीं होती, कारण कि औदारिक शरीर आदि अपनी जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा का गुणकार अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण ही बतलाया है। और यहाँ तो कितना बतलाते हैं? सब जीव राशि से अनंत गुणा। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की बात है ना वहां पर, एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा के स्वामी का विचार किया। अब एक जीव का अवलंबन लेकर नारकी के अंतिम समय में वृद्धि नहीं है क्योंकि उत्कृष्टपने को प्राप्त हो गया है। एक जीव की अपेक्षा अवलंबन लेकर हमने नारकी के अंतिम समय की उत्कृष्ट वर्गणा देखी, अब उसमें और बढ़ोतरी करो कहे तो यह अभी पॉसिबल नहीं है। अब इसलिए क्या कहते, अतः बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त दो जीवों का अवलंबन लेकर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा को प्राप्त करते हैं, दो जीवों का मिलकर उसको, वो भी प्रत्येक, हाँ ये एक बंधन में है ना तो उसकी वर्गणा भी गिनेंगे हमको, और भी एक एक परमाणु से बढ़ते हुए विकल्प देखना है। तो नारकी का जो था अभी दो का मिलकर उतना अगर कहेंगे तो वो दो में बटेगा ना आधा आधा, जितना नारकी का था अकेले का उतना दो जीवों का मिलकर बताएंगे पहले में पहले। देखो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा को प्राप्त करते यथा, अभी इसको समझाएंगे। यहाँ गुणित घोलमान विधि से आए हुए, देखो हमने तो पहले कौन से दो जीव देखे थे, एक शपित कर्मांशिक एक गुणित कर्मांशिक, परंतु घोलमान में क्या होता है, गुणित कर्मांशिक में तो वो तो बिल्कुल गुणित प्रमाण में वो तो अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है, और घोलमान में कम ज़्यादा होते रहता है, परंतु उसमें अधिकांश तो गुणित प्रमाण में। दूसरा ऐसा भी क्षपित घोलमान भी जीव होता है। इसे चार प्रकार हमने पहले विस्तार से देखे थे। देखो यहाँ गुणित घोलमान विधि से आए हुए ऐसे दो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव लो, जिनके शरीर परस्पर में संबद्ध है और जिनमें से प्रत्येक के प्रत्येक शरीर वर्गणा का संचय नारकी के उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा के संचय से आधा आधा है, इसलिए दोनों मिलकर वो नारकी के समान हो जाएंगे। क्या कहना चाहते वो ख्याल में लेना है यहाँ पर। अतएव इन दोनों जीवों के प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का संचय अंतिम समयवर्ती नारकी जीव के वैक्रिक तेजस और कार्मान शरीर के संचय का समान हो उसके समान होता है। यानी दो जीव लिया, अभी एक जीव की अपेक्षा तो उत्कृष्ट तक पहुंच गए, एक जीव की अपेक्षा उससे अधिक नहीं हो सकता। अभी नाना जीवों की अपेक्षा उसमें बताएंगे। तो इसमें पहले दो जीव लिए, गुणित घोलमान रूप से आए हुए बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव, तो उनका जो हरेक का जो है वो नारकी जो उत्कृष्ट देखा था उसके तो वैक्रिय तेजस कारमान थे, इनका कौन सा होगा औदारिक तेजस कारमान। हरेक का उसके आधा आधा, दोनों का मिलकर वो नारकी के समान। यद्यपि वैक्रिय शरीर के शरीर से औदारिक शरीर असंख्यात गुणाहीन होता है, तो भी इन दोनों संचयों के सदृश होने में कोई विरोध नहीं आता। भले वो असंख्यात गुणाहीन है, परंतु हाँ वो तो सदृश होने में उसकी कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि तेजस और कारमान शरीरों के रहते हुए वैक्रिक शरीर के असंख्यात वे भाग मात्र औदारिक शरीर का द्रव्य उपलब्ध होता है। क्योंकि तेजस कारमान है ना, तो हाँ जो सिमिलैरिटी दो डिसिमिलैरिटी थी वो उसके कारण वो सिमिलर हो सकते हैं। अब इन दोनों जीवों में स्थित औदारिक तेजस और कारमान शरीर के छह पुंजों को पूर्वोक्त विधि से तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक वे दो जीवों के योग्य उत्कृष्टपने को प्राप्त नहीं होते। हमको तो अलग अलग विकल्प ही बताना है, तो इसमें से एक परमाणु बढ़ाओ, फिर औदारिक का विश्रसोपचय बढ़ाते जाओ, अनंत विकल्प होने के बाद फिर औदारिक का परमाणु बढ़ाओ, तो इन दो में पॉसिबल जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ाना छह पुंजों में। हाँ, वो ऐसा ही लिया क्योंकि नारकी के आगे वाला विकल्प बताना, उसके छोटे वाला विकल्प वो पहले आ चुके, एक एक जीव की अपेक्षा से भी वो बता चुके हैं। जो हमने सहयोगी तक के विकल्प देखे थे, एक पृथ्वी का एक की अपेक्षा वो बीच में आ गए सब। अब हमें आगे वाले विकल्प जो अपुनरुक्त स्थान बताना है, इसलिए ऐसे कोई जीव लिए है, तभी ये दो जीवों को मिलकर उत्कृष्ट पने उनमें पॉसिबल जितना उत्कृष्ट है वहां तक ले लिए। पुनः बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त तीन ऐसे जीव लो जो परस्पर में शरीर से संबद्ध हो और जिनमें से प्रत्येक का यानी एक एक जीव का प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा संचय दो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट संचय के तीसरे भाग प्रमाण हो। देखो पहले हमने नारकी का उत्कृष्ट था उसके समान दो जीव लिए, फिर उसका आधा आधा उसमें बढ़ दिया तो दोनों का मिलकर नारकी के समान हुआ, फिर उसमें एक एक प्रदेश बढ़ाया। अब ये मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सकता है उतना बढ़ा चुके, अभी उसके बाद पृथ्वी कायकों में और नहीं बढ़ सकता है, तो अभी अन्य तीन जीव लिए। तो यहाँ दो का मिलकर जितना उत्कृष्ट था उतना तीनों का मिलकर ले लेना, हाँ तो उसका तीसरा भाग हुआ। एक एक में वन थर्ड आ गए ना, दोनों का मिलकर जितना था उतना ही तीनों का मिलकर अभी कोई अन्य जीव लेना जो एक बंधन में बंधे हैं, इसलिए तीसरा भाग प्रमाण। इसलिए इनका संचय उक्त दो जीवों के संचय के समान होता है। क्योंकि उसमें अभी बढ़ाना है ना, एक में पॉसिबल जितना बढ़ सकता था उतना बढ़ाया, अभी वहां एक एक के खाते में वे जो दो का मिलकर जितना था उसका वन थर्ड आ गया, वन थर्ड आया ना, वन थर्ड, दो का मिलकर जितना था, दो का मिलकर छह था, तो वो तीन का मिलकर छह हुआ, यानी प्रत्येक के खाते में दो दो, तो यहां प्रत्येक के खाते में तीन तीन थे ना, तो उनमें भी पॉसिबिलिटी है प्रत्येक में तीन तीन होने की, उत्कृष्ट होने, तो वे उत्कृष्ट होने तक बढ़ेंगे फिर, हाँ न हो जाएगा, फिर वो उनको चार में बटाएंगे। देखो, पुनः उन पूर्वोक्त जीवों को छोड़कर, यानी वो अभी दो वालों को छोड़ना और तीन वालों का अवलंबन लेकर और इनका अवलंबन लेकर पूर्वोक्त विधि से अपने उत्कृष्ट प्रमाण के प्राप्त होने तक द्रव्य की वृद्धि करनी चाहिए। पुनः इन तीनों का द्रव्य किनके द्रव्य के समान होता है, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं, यथा अभी तीन का मिलकर जितना हो गया है, ऐसे चार बादर पृथ्वी का एक जीव लो जो एक बंधन बद्ध है और जिनमें से प्रत्येक को तीन बादर पृथ्वी का एक जीवों के उत्कृष्ट संचय के स के ऊपर बिंदी लगाना, चौथे भाग प्रमाण द्रव्य का संचय प्राप्त हुआ है। ये समझने में आसान है ना, अभी हमने वो तीन में तो नौ बन गए थे, अभी नौ के चार हिस्से कर दो, अतएव इन चारों का संचय उक्त तीनों के संचय के तुल्य है, इनके भी द्रव्य को उसी क्रम से बढ़ाना चाहिए जिससे इन चारों द्रव्यों का द्रव्य, चारों जीवों का द्रव्य उत्कृष्टपने को प्राप्त हो जाए। अभी वो चारों का उत्कृष्ट हो जाए, हर एक के खाते में तीन तीन आए जाते हैं, बारह हो जाएंगे, फिर उसको पांच में बांट दो, इस प्रकार पांच छह सात आठ नौ और दस से लेकर तत्प्रायोग्य कहाँ तक बढ़े सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण, तत्प्रायोग्य लिखा ना, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के होने तक ले जाना चाहिए। पुनः यानी वहां जो लास्ट में ले गए तो वहां भी उनके उत्कृष्ट तक बढ़ाना, पुनः इनके औदारिक तेजस और कारमान शरीरों को क्रम से बढ़ाकर पुनः एक बंधन बद्ध इतने बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव लेने चाहिए, क्योंकि हमको उससे कम वाले भी होगी ना, परंतु हमें आगे वाले विकल्प बताना है, तो अभी पृथ्वी का एक की लिमिट आ गई, उसके आगे तेजस का एक को लेना है, हाँ समूह को लेना है, जैसे हमने दो पृथ्वी का एक ले, फिर तीन पृथ्वी का एक ले, चार पृथ्वी का एक ले, मान लेते हमने सौ पृथ्वी का एक तक ले गए, अभी पृथ्वी का एक की लिमिट खलास हो गई, तो 101 वाला समूह हम अग्नि का एकों का लेंगे। हाँ इनका इतना ही हो सकता है, बादर पृथ्वी का इनको लिमिट इतनी ही थी, इसके आगे वो एक बंधन में बंधे हुए नहीं पाए जाते, पल्ल का संख्या तो बात। अब तेजस का एक को लिया, देखो पुनः एक बंधन बद्ध इतने बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव लेने चाहिए जो द्रव्य संचय की अपेक्षा एक बंधन बद्ध पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के समान हो। ये समझ में आया, इतने जीव लेना वहां अग्नि का एक, कि जिनकी जो उत्कृष्ट वहां पर जितना इनका था ना, पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण बादर वायु पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों का जो समूह रूप जो वर्गणा थी, उस उतने ही वाला अग्नि का एकों का समूह लेना है। पुनः इनका आश्रय करके पूर्वोक्त विधि से इनके मात्रा है ऊपर बराबर करना, औदारिक तेजस और कार्मन शरीरों को अनुपूर्वी से बढ़ाकर, ये अनुपूर्वी से बढ़ाकर इन्हें क्रम से बढ़ाकर, क्योंकि अनुपूर्वी कैसी होगी, पहले किसको बढ़ाना है, पहले औदारिक के विश्रसोपचय, फिर औदारिक, फिर तेजस के विश्रसोपचय, तेजस कार्मन के विश्रसोपचय और कार्मन, वो तो साथ साथ बढ़ते रहेंगे, अनुपूर्वी से बढ़ाकर पुनः एक जीव को अधिक करते हुए अभी उसमें एक एक जीव बढ़ाना है, जैसे हमने दो के तीन, तीन के चार किए थे, अभी यहाँ जो पॉसिबल असंख्यात जीवों का समूह स्टार्टिंग में ही लिया था उसमें भी एक एक जीव बढ़ाते जाना। वहाँ हमने बढ़ाया ना, जितना दो में था उतना तीन में हमने किया, फिर उसमें उसके परमाणु बढ़ाना, इस तरह से एक एक जीव को अधिक करते हुए, जब तक एक बंधनबद्ध बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव कितने हो जाएंगे तब तक बढ़ाना है। आवली वर्ग से असंख्यात गुणा नहीं हो जाते, प्रतरावली से असंख्यात गुणे नहीं हो जाते तब तक इनकी संख्या और उसी क्रम से द्रव्य को बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए। अथवा एक बंधनबद्ध तत्प्रायोग्य असंख्यात जीव लेने चाहिए, क्योंकि देवकृत झाड़ियों में लगी हुई अग्नि में, झाड़ियों में भी जंगल में जो बड़ी बड़ी आग लगते हैं, जैसे इसको दावानल कहेंगे, बड़े बड़े जो है बड़वानल, क्या कहते हैं उसको, दावानल ही कहते ना जंगल की आग, हाँ वो देवकृत जो लगती है, देवकृत झाड़ियों में लगी हुई अग्नि में बादर तेजस का एक पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के एक स्थान में एक बंधनबद्ध होने में कोई विरोध नहीं आता। यानी वो उसका एक बंधनबद्ध बड़ाई में बड़ा समूह कहाँ पाया जाता है, ये देवकृत जो अग्नि लगती है उसमें। हाँ, जब तक ये इतने नहीं हो जाते, असंख्यात गुणे नहीं हो जाते, पहले पल्ले का असंख्यात वह भाग था, हाँ तो उससे ये इतना ज्यादा, उससे इतना गुना हो जाए, देखो देखो क्या कहें आप, इस विधि से अमुक अमुक एक बंधनबद्ध बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव आवली वर्ग से असंख्यात गुणे नहीं हो जाते तब तक इनकी संख्या और उसी क्रम से द्रव्य को बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए। हाँ, उसके समान थे, उसके असंख्यात थे, अभी बढ़ते बढ़ते कितने गुणे हो जाते हैं। क्योंकि टोटल नहीं, एक बंधन बद्ध लेना है ना, ये आवली वर्ग से असंख्यात गुणे बहुत बड़ा है। देखो देखो उनका प्रश्न है, ऐसे टोटल जीव लेने हैं इतने कि पहले से इतने इतना गुना लेने हैं, देखो देखो यहाँ हमने क्या किया, ये पृष्ठ संख्या 80 पर देखना, नीचे से पांचवी लाइन, इनके औदारिक तेजस कारमान शरीरों को क्रम से बढ़ाकर पुनः एक बंधनबद्ध इतने बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव लेने चाहिए जो द्रव्य संचय की अपेक्षा एक बंधनबद्ध पल्लवम के असंख्यात भाग प्रमाण बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के समान हो। वो वहाँ कितने जीव है वो वहाँ नहीं लिखा, इतने लेने चाहिए कि जिनके द्रव्य उनका उनके समान हो। अभी उसमें उनका द्रव्य भी बढ़ाओ और एक एक जीव भी बढ़ाओ, तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो जीव कितने नहीं हो जाते, एक एक जीव को अधिक करते हुए, जब तक एक बंधनबद्ध बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव आवली वर्ग से असंख्यात गुणे नहीं हो जाते तब तक इनकी संख्या और उसी क्रम से द्रव्य को बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए। द्रव्य तो बढ़ाते ही रहे हैं, परंतु फिर एक एक जीव भी बढ़ाना है। नहीं 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 जीवों की संख्या लिए, ये जीवों की संख्या, बढ़ाते हुए जब तक ये इतने नहीं हो जाते। हाँ, इतनी होनी चाहिए, जो बढ़ाकर इतनी यहाँ तक उनकी, जैसे वहाँ पल्ले का संख्या तो भाग कहा, वैसे यहाँ आवली के वर्ग का संख्या गुणा कहा। एक एक जीव को बढ़ाया, नहीं नहीं पल्ले के असंख्या तो भाग थे। अभी जैसे हमने देखे ना कि जो पृथ्वी का एक 100 थे, अभी उतना ही द्रव्य 50 अग्नि कायकों को होगा तो उसकी संख्या वहां उन्होंने बताई नहीं है, ख्याल आता है। देखो हम शंका समाधान पढ़ेंगे आगे। शंका, एक बंधन बद्ध वे जीव कहाँ उपलब्ध होते हैं, एक ही बंधन में बद्ध इतना बड़ा अग्नि, वो पूरा ही एक अग्नि कहला जिसको हम कहेंगे, इतना बड़ा कहाँ पाया जाता है। समाधान, लताओं का दाह होते समय देवकृत झाड़ियों में या महावन का दाह होते समय एक बंधन बद्ध उक्त जीव उपलब्ध होते हैं। ये जंगलों में बड़ी बड़ी आग लगती है उसकी बात यहाँ की है। कहीं मैंने पढ़ा वो अकृत्रिम चैत्यालय में घड़े होते हैं ना धूप के, वहां भी वो अग्नि का एक बड़ा समूह है, उसकी उसकी भी बात कहीं मैंने पढ़ी। इसकी यह इस विषय ने अन्यत्र है वो। पुनः इनके औदारिक तेजस और कार्मन शरीरों के पृथक पृथक बढ़ाने पर, अभी उनको बढ़ाते जाना है ना, प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा उत्कृष्ट होती है। यहां जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? पल्योपम का असंख्यातवा भाग गुणकार है। ये द्रव्य वर्गणा बढ़ती चली जाएगी। देखो हमने क्या कहा, बादर पृथ्वी कायिक के बाद बादर तेजस कायिक को लिया, एक बंधन बद्ध वाले, वो अमुक इतने होने तक उसको लिया है, और फिर उसको औदारिक तेजस कारमान बढ़ाते गए जब तक वो उत्कृष्ट हो जाती है। तो जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा कितनी है, तो पल्ले का असंख्यात्व भाग गुणा है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, देव, नारकी, आहारक शरीरी प्रमत संयत चाहिए, कॉमा निकाल देना। संयोगी केवली और अयोगी केवली ये जीव प्रत्येक शरीर वाले होते हैं, क्योंकि इनका निगोध जीवों के साथ संबंध नहीं होता। देखो ये यहां लिखा है ना, इन्हें प्रत्येक शरीर वर्गणा ही इसके लिए कहते हैं, क्योंकि वहां अन्य निगोदियों के साथ उसका संबंध नहीं है। विग्रह गति में विद्यमान बादर निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीव प्रत्येक शरीर वाले नहीं होते, क्योंकि निगोद नाम कर्म के उदय के साथ गमन होने के कारण विग्रह गति में भी एक बंधनबद्ध अनंत जीवों का समूह पाया जाता है। यदि आहारक वाला वो कॉमा निकाल देना, आहारक शरीरी प्रमत्त संयत, वो कॉमा निकाल देना, नहीं तो प्रमत्त संयत उसके जो औदारिक शरीर है वहां तो है निगोद राशि है। आहारक शरीरी वाला लेना खाली। देखो यदि विग्रह गति में वर्तमान अशेष जीव है ना, निगोच को छोड़कर अन्य जीव प्रत्येक शरीर होते ऐसा माना जाए, तो तो प्रत्येक वर्गणाएं अनंत हो जावे, परंतु ऐसा है नहीं। वे असंख्यात लोक प्रमाण होती है। ये क्या कहना चाहते हैं? प्रत्येक शरीर वर्गणा कितने भी हो जाए तो भी वो क्या कितनी होती है? असंख्यात रहती है, असंख्यात लोक प्रमाण। देखो देखो मैं समझाती हूँ, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद जब तक शरीर ग्रहण नहीं किया है तब तक उसको प्रत्येक शरीर मानो, ऐसा किसी का कहना है, क्योंकि अभी शरीर ग्रहण नहीं किया है ना, तो कहते ऐसा नहीं है, उसको वो बादर निगोद वर्गणा वालों में ही ले लेंगे, क्योंकि बाद वो निगोद नामकर्म का, इन्हें साधारण नामकर्म का उनका उदय चल रहा है, और साधारण नामकर्म का है ना उसका, अभी वहाँ भी वो तेजस कारमान है, साधारण नामकर्म है उसमें, तो ऐसे अनेक जीव एक साथ है उसमें, विग्रह गति में तो बहुत सारे अनंत अनंत जीव है, उनका भी यहाँ समूह बताया है, और उसको प्रत्येक शरीर नहीं कह सकते, ऐसा कहते हैं। वहाँ एक बंधनबद्ध है, परंतु उसको प्रत्येक शरीर वाले नहीं कहेंगे। बादर निगोद वर्गणा में बाद में उसकी बात करेंगे, तो तब हम देखेंगे उसको। ऐसा कहते हैं जैसे यहाँ साधारण नामकर्म का उदय है, इसलिए उसको प्रत्येक शरीर ही नहीं कहा। तो जिसको प्रत्येक शरीर नामकर्म का उदय है, अन्य जीव अशेष जीव ने अन्य जीव जिसको साधारण नामकर्म का उदय नहीं है, ऐसे जीव लिए उसकी बात करो, ऐसा कहते हैं। क्योंकि हर एक जीवों की संख्या असंख्यात ही होती है। यदि निगोद को अलग रखो तो भी कौन से भी गति भी हो या कौन से भी कोई पर्याय, पृथ्वी कायिक भी है, अग्नि कायिक भी, कोई से किसी को भी ले लो, हर एक के अपने अपने असंख्यात उसकी संख्या है। अभी कौन सा कितना असंख्यात है उसकी बात अलग अलग है। तो ये कहते वो कितनी हो गए, तो असंख्यात लोक प्रमाण हो गए। ऐसा अविरुद्ध भाषी आचार्यों के वचनों से जाना जाता है। अब शंका कर थोड़े छोड़ने वाला है, कहते विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय ही नहीं होता। उदय की बात की, वहां तो कौन सा बात लिया था, ये साधारण नाम कर्म, एक्चुअली उदय तो उसका भी नहीं है वहां पर, परंतु उदय के साथ गमन होने के कारण वहां जीव पाए जाते, ऐसा कहा था। तो शंकाकार कहता है विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता। वहां निगोद नाम कर्म लिया था परंतु उदय कहा था, अब ये कहता है उदय है ही नहीं है। उदय कब होता है? शरीर ग्रहण करने के पहले समय से। विग्रह गति में तो 21 प्रकृतियों का उदय है, उसमें ये नहीं है, गति गत्यानुपुरी आदि अन्य प्रकृतियों का उदय है, इनका उदय नहीं है। तो कहते विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता, इसलिए वहां न तो प्रत्येक शरीरपना प्राप्त होता है, न साधारण शरीरपना ही प्राप्त होता है, इसलिए वे प्रत्येक शरीर बादर और सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं में से किन्हीं में भी अंतर्भूत नहीं होती है। प्रश्न समझ में आया? शरीर नाम कर्म का उदय ही नहीं उनको, तो उसको ना प्रत्येक शरीर वर्गणा कहो, ना बादर निगोद वर्गणा कहो, और ना ही सूक्ष्म निगोद वर्गणा कहो। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि विग्रह गति में बादर और सूक्ष्म निगोद नाम कर्मों का उदय दिखाई देता है, इसलिए वहां पर भी बादर और सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणाएं उपलब्ध होती हैं। उदय है, उन्होंने पहले लिखा था। और इनसे अतिरिक्त जिन्होंने शरीरों को ग्रहण कर लिया है या नहीं ग्रहण किया है, वे सब जीव प्रत्येक शरीर वर्गणा वाले होते हैं। मेरे ख्याल से वो रुजुगति वाला ले आ गया। उन्होंने कहा विग्रह गति बादल सोम निगोद नाम कम्माण उदय दंशन, ये देखा जाता है। एक विग्रह गति में बादर और सूक्ष्म निगोद नाम कर्मों का उदय दिखाई देता है लिखा। क्या कहना चाहते पता नहीं, आगे पढ़ेंगे। इसलिए प्रत्येक शरीर वर्गणाएं असंख्यात लोक प्रमाण होती है यह सिद्ध होता है। शंका, एक बंधन बद्ध वे जीव असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, यदि कहो कि यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है, तो इसका समाधान यह है कि अब यह शंकाकार की बात है। ईषत प्रागभार पृथ्वी में बादर पृथ्वी का एक जीव असंख्यात लोक प्रमाण होते हुए भी सबसे स्तोक है। एक बंधन बद्ध में असंख्यात लोक प्रमाण कैसे हो सकते हैं, उसकी बात कहते हैं। इनसे एक जल बिंदु में जल का एक जीव असंख्यात गुणे होते हैं। ओ गॉड, एक बंधन बद्ध, हाँ, एक जल का एक जल में जीव, अलवर वालों ने ये, हाँ, इनसे एक जल बिंदु में जल का एक जीव असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे एक अंगारे में अग्नि का एक जीव असंख्यात गुणे होते हैं। उदग बिंदु एक किमी इंगाले, इंगाले अंगार। इनसे एक जल के बुलबुले में वायु का एक जीव असंख्यात गुणे होते हो। समझ में है, जल का बुदबुदा परपोटा, हाँ। इस प्रकार इस अल्पभूतव सूत्र से यह बात जानी जाती है। इसलिए पल्लवम के असंख्यातवे भाग प्रमाण एक बंधनबद्ध जीवों के अवलंबन से एक उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा होती है, यह बात घटित नहीं होती, ये उसका प्रश्न है। क्योंकि ये तो इतना समूह बताए ना, एक जल बिंदु में इतने हैं जीव, उसमें इतने हैं, और हमने तो एक बंधन बद्ध जीव कितने देखे, पल्ले के असंख्यात विभाग। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ईषत प्रागभार शिला में एक जल बिंदु में एक अंगारे में और जल के एक बुलबुले में अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण जीवों के होने पर भी वहां मात्र तेजस का एक पर्याप्त जीव ही एक बंधनबद्ध उपलब्ध होते हैं। क्या कहना चाहते हैं, वो भले एक पहाड़ हो या ईषत प्रागभार पृथ्वी हो, कितने जीव है उसमें, तो असंख्यात लोक, परंतु वो अलग अलग है, एक बंधन में बद्ध नहीं है। जैसे मिट्टी का ढेला देखे या रेती है, तो रेती में वो जो कण अलग अलग है, तो एक कण में कितने हो सकते हैं, उसकी बात हमने कहेंगे। एक बंधन में बद्ध कितने हो सकते हैं, तो एक बंधन में बद्ध मैक्सिमम जीव तेजस का एक ही हो सकते हैं, ये बात बताना चाहते हैं। एक बंधन में बद्ध तेजस का एक पर्याप्त जीव ही अधिक हो सकते हैं। शंका, एक बंधन बद्ध इतने ही जीव उपलब्ध होते हैं, अधिक नहीं होते, यह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान अविरुद्ध आचार्यों के वचनों से जाना जाता है। और वे तेजस कायिकों में ही बहुत उपलब्ध होते हैं, अन्यत्र नहीं उपलब्ध होते। इसलिए क्या कहना चाहते हैं, ये जो अन्य जीव है, हम जैसे ये पृथ्वी है, परंतु उसमें अलग अलग पृथ्वी का, एक बंधन में बद्ध नहीं है। एक बंधन में बद्ध मैक्सिमम पॉसिबल जीवों की संख्या अग्नि कायिकों में ही होती है। इसलिए लता दाह आदि में एक अंगारा ही प्रधान किया गया। एक अंगारे में इतने जीव है ना, उससे असंख्यात गुणे जीव लिखे, और फिर भी उसमें एक बंधन बद्ध कितने हो सकते हैं उसकी बात यहाँ ली। वहां गुणित कर्मांशिक जीव यदि बहुत होते हैं तो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ही होते हैं। टोटल जीव अभी हमने कितने गिने थे? आवली का वर्ग लिया था ना, आवली वर्ग के असंख्यात गुणे, और उसमें गुणित वर्ग कर्मांशिक कितने हो सकते हैं एक बंधन मध में आवली के असंख्यात भाग। हाँ, उसमें से एक अंगारा लिया, छिनके अंगारे विस्तव, जिसको विस्तव उत्कृष्ट समूह रूप से इतने जीव इकट्ठे देखे, पर वो ज्वाला पूरी नहीं लेनी है, पूरा ज्वाला नहीं लेना। हाँ, यहाँ लिखा है अंगार, अंगार जिसको कहा। देखो अभी हमने जो पढ़ा था, ईषद प्रागभार से एक जल के बिंदु में ज्यादा है, उससे एक अंगार में ज्यादा है, यानी वो कितने हो गए? असंख्यात लोक हो गए। इतने सारे एक बंधन बद्ध नहीं है, एक बंधन बद्ध कितने हो सकते हैं उसकी यहाँ बात चल रही है। एक बंदर बद्ध, हाँ, उत्कृष्ट तेजस काय, हाँ, दावा नल में जो वहां अंगारा है, एक अंगारा, अभी वो ठिंगी को कहते हैं, वो अंगारे को कहते हैं, यानी विस्तव जो कहते हैं। देखो अवली के असंख्यात, बाकी के सब गुणित कर्मांशिक नहीं होते, यानी इतने जीव इकट्ठे होते हैं एक बंधन बद्ध है, परंतु उसमें गुणित कर्मांशिक कितने हो सकते हैं इसमें से आवली के असंख्यात विभाग, और एक बंधन बद्ध कितने तक हमने अभी संख्या देखी थी? आवली के वर्ग के असंख्यात गुणा, एक बंधन में बद्ध जीव, और दावानल में पूरे जीव कितने हो गए? ये अपने उसमें एक अंगारे में अग्नि का एक जो असंख्यात गुणे ने अंगारे में बताया, परंतु अंगार में है फिर भी उसको एक बंधन बद्ध नहीं कहा। देखो अभी हाँ, विशेषार्थ में फिर बताते, यह 17वीं वर्गणा है, ये 17वीं वर्गणा में बहुत अभी पसीना आ गया ना। देखो अंगारा का देख रहे क्या अर्थ है? पहले एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा कहे आए हैं। एक जीव की अपेक्षा कहाँ देखा हमने? नारकी के, हाँ, नारकी के अंतिम समय में। यहाँ एक बंधन बद्ध नाना जीवों की अपेक्षा यह वर्गणा बतलाई गई है। ये समझ में आए? ये कौन सा अपना विषय चल रहा है, टॉपिक विस्तव ही होता है, अंगारे ने विस्तव, विस्तव ने अभी एक टुकड़ा जिसको हम कहें बर्निंग चार, उसको अंगारा कहते हैं। हाँ, परंतु उसमें तो असंख्यात लोक प्रमाण है जीव। स्पार्क में तो ये जो कोई आवली के वर्ग की, यानी एक बंधन में बद्ध अग्निकाय के लिए, उसमें देखो यहाँ क्या कहते हैं, एक बंधन बद्ध नाना जीवों की अपेक्षा यह वर्गणा बतलाई गई है। ये वर्गणा द्रव्य समुदाहार की बात चल रही थी ना अपने, भूल गए, दो होते ना, एक श्रेणी, एक श्रेणी वाले, और यह समुदाहार यानी अनेक जीवों की बात है, ये निकालना, क्योंकि वहां बताए थे श्रेणी को बताए के बिना ये आप समुदाहार की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो वहां कहा था, वहां उसमें इसकी भी बात होती है और उसकी भी है। देखो पृष्ठ संख्या 53 वर्गणा द्रव्य समुदाहार का प्रकरण है, 75 नंबर का। अभी हम वो सूत्र नहीं पढ़ेंगे, ये कौन सा प्रकरण है? वर्गणा द्रव्य समुदाहार। नीचे पूछा है वर्गणा प्ररूपणा 16 अनुयोग द्वारों के द्वारा कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा की थी, और यहाँ वहां दो ही अनुयोग बताए, निक्षेप और नय, और उसका अन्य 14 अनुयोग द्वारों का कथन किए बिना ही वर्गणा द्रव्य समुदाहार का कथन क्यों कर रहे हो, मिला ना 54 पृष्ठ पर। तो वहां बताया था वर्गणा प्ररूपणा अनुयोग द्वारा वर्गणाओं की एक श्रेणी का कथन करता है। एक श्रेणी यानी वो एक प्रदेशी है, वो तो ऐसे 23 वर्गणा कथन करेंगे कंटिन्यूएशन में। और वर्गणा द्रव्य समुदाहर वर्गणाओं की नाना और एक श्रेणियों का कथन करते हैं। तो फिर अभी उसमें ये अभी हम यहाँ तक आए थे, कहाँ तक, ये जो विशेषोपचय का प्रारंभ किया था ना, वहाँ देखेंगे हम एक जीव की अपेक्षा और नाना जीव की अपेक्षा, ये वहाँ जिसने को हमने प्रत्येक द्रव्य क्या प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा की बात चालू होगी। एक मिनट, ये 65 पेज पर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा वहाँ से शुरू हुई थी। अब उसमें एक जीव के एक एक शरीर की बात की और बाद में नाना जीवों की अपेक्षा, ये दो उसमें बातें होगी, यही बात यहाँ आ रही है। फिर निकालना अपना प्रश्न पृष्ठ 83 विशेषार्थ फिर पढ़ती हूँ। पहले एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा कहे आए, यहाँ एक बंधन बद्ध नाना जीवों की अपेक्षा यह वर्गणा बतलाई गई है। जिनका शरीर पृथक पृथक अर्थात प्रत्येक होकर भी परस्पर जुड़ा हुआ होता है वे एक बंधनबद्ध जीव माने गए हैं। है तो अपना अलग, क्योंकि उसको प्रत्येक शरीरी जीव ही कहेंगे, फिर भी उसकी वो वर्गणा एक प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे नाना जीवों की अपेक्षा, क्योंकि वो जुड़े हैं, स्कंद रूप से बने हैं। ऐसे पृथ्वी का एक जीव पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण हो सकते हैं और अग्नि का एक जीव इनसे भी अधिक हो सकते हैं, जो एक पिंड में बंधनबद्ध रहते हैं, और इससे इन सबकी मिलकर एक प्रत्येक वर्गणा बनती है। साधारण शरीर से इस प्रत्येक शरीर में बहुत अंतर होता है, वहां शरीर एक ही होता है किंतु यहां सबके अलग अलग शरीर होते हैं, मात्र प्रत्येक शरीर एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं और इसी से इन्हें एक बंधनबद्ध मानकर इनकी एक वर्गणा मानी गई है। देखो हम जब कहते हैं ना एक पेड़ एक जीव है कि नहीं है, वहाँ भी वो प्रत्येक शरीर जीव है और वो शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सबको मिलकर एक स्कंद कहने में आता है। एक तेजस का एक जीव के औदारिक तेजस और कारमान शरीर तथा इनके विश्रसोपचयों का जितना उत्कृष्ट संचय हो सकता हो उसे असंख्यात गुणित आवली वर्ग से गुणित करने पर तत्प्रायोग्य असंख्यात से गुणित करने पर उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का प्रमाण आता है। ये समझ में है किसके क्या गुणा करना है? देखो एक जीव के जितना है उतने जीव है ना, एक जीव को इतना तो 100 जीवों को कितना, वैसे एक तेजस का एक जीव के औदारिक तेजस कारमान शरीर और उनके विश्रसोपचय यानी 6 पुंजों का जितना उत्कृष्ट संचय हो सकता है, और यहाँ एक बंधनबद्ध कितने जीव एक से हो सकते हैं, आवली वर्ग से असंख्यात गुणे, एक बंधनबद्ध जीवों की बात है, इसलिए इसको या तत्प्रायोग्य असंख्यात से गुणित करने पर, कितने से गुणा करना, असंख्यात गुणित आवली वर्ग से गुणित करने पर, या दूसरा ऑप्शन बताया यथा योग्य असंख्यात से गुणित करने पर उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का प्रमाण आता है। ये उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा किस अपेक्षा से है? नाना जीवों की अपेक्षा से। पहले हमने नारकी को देखा था वो एक जीव की अपेक्षा, ये भी प्रत्येक शरीर वर्गणा ही कहलाएगी, परंतु अनेक शरीरों का इकट्ठा जुड़ गए एक साथ इसलिए उसको कहा है। यहां अंतिम समयवर्ती नारकी के उत्कृष्ट संचय से आगे की प्रक्रिया द्वारा इसी वर्गणा के उत्पन्न करने की विधि कही गई है, क्योंकि हमने नारकी के बाद दो पृथ्वी का एक जुड़े हुए देखे, फिर तीन पृथ्वी का एक, चार पृथ्वी का एक, इससे बढ़ता हुए फिर बादर पृथ्वी का एक के बाद अग्नि का एक को लिया। और वहाँ मैक्सिमम पॉसिबल किस में होता है नाना जीवों की अपेक्षा, तो ये अग्नि का एकों को लिया वहाँ पर। यह नाना प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा रूप होकर भी एक बंधनबद्ध होने से एक प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा मानी गई है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यह वर्गणा यहाँ समाप्त होती है। इसके आगे की यह समझ में थोड़ा तो समझ में, प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा क्या है इतना हाँ, एक एक परमाणु के और उसके तीन काल की पर्याय जानते हैं रहते हैं। देखो ये कहे ना, अभी तक अनादि से अनंत जीव जितने हैं तो उन्होंने कितने परमाणुओं को लेकर छोड़ा होगा अपने शरीर रूप से, कर्म या नौकर्म रूप से, कर्म नौकर्म दोनों। फिर भी अनंतानंत ऐसे पुद्गल परमाणु है जिसके एक भी जीव ने कभी छुआ नहीं अपने शरीर रूप से ग्रहण किया। हाँ, ऐसे भी वर्गणाएं है तो पुद्गल भी कितने हैं अनंत, उसका ख्याल में आता है। अभी 92 नंबर का सूत्र, पत्ते शरीर दव वगणानम उवरी ध्वसुन्न दव वगणानाम। प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर ध्रुव शून्य वर्गणा है। पहले भी ध्रुव शून्य आई थी ना वर्गणा, अब ये दोबारा आ गए। हाँ, उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर दूसरी ध्रुव शून्य वर्गणा, ये ग्रह दिख रहा है ध्रुव करना, ध्रुव शून्य करना उसको। दूसरी ध्रुव शून्य वर्गणा संबंधी सबसे जघन्य ध्रुव शून्य वर्गणा होती है। अनंतर एक एक अधिक के क्रम से अनुपूर्वी से नहीं, क्रम से, एक बढ़ाया, दो बढ़ाया, तीन बढ़ाया, इस तरह से सब जीवों से अनंत गुणी ध्रुव शून्य वर्गणाओं के जाने पर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गणा उत्पन्न होती है। वह जघन्य वर्गणा से अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? सब जीवों का असंख्यातवा भाग प्रमाण गुणकार है। स के ऊपर बिंदी लगाना। यथा सब जीव राशि को असंख्यात लोक प्रमाण शरीरों से भाजित कर पुनः आवली के असंख्यातवे भाग से असंख्यात लोकों से और एक जीव के औदारिक तेजस और कार्मन शरीर के द्रव्य से गुणित कर, पहले पूरे जीव राशि को असंख्यात लोक से भाग किया और आवली का असंख्यात भाग असंख्यात लोक और एक जीव के औदारिक तेजस कार्मन द्रव्य से गुणित किया, जो लब्ध आवे उसमें से एक कम करने पर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा होती है। उनके पास एक एक का भी हिसाब है। हाँ, पुनः इसे एक अधिक उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा से भाजित करने पर सब जीव राशि का असंख्यातवा भाग आता है। पहले पूछा था, पहली जो प्रत्येक शरीर वर्गणा थी उत्कृष्ट, उसमें एक मिला दो तो इसका जघन्य आया, तो इससे उसका उत्कृष्ट कितने गुना है, ये बात हुई थी ना। इसलिए पहले कहा गया गुणकार ही होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यह 18वीं वर्गणा है। एकांतवादी दृष्टि के समान यह सदाकाल शून्य रूप से अवस्थित है। द्रव्यानियों को बता दिया उसने, क्या कहते हैं एकांतवादी दृष्टि, यानी एक ही को सर्वथा मानने वाले की जो दृष्टि, उसके समान सदाकाल शून्य रूप से अवस्थित है, इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वैसे वो दृष्टि का कोई विषय ही नहीं है एकांतवादियों के। अब 93 अच्छा बताया क्या? ध्रुव शून्य दव्य वगणानम उवरी बादर निगोद दव्य वगणानाम। ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर बादर निगोद द्रव्य वर्गणा है। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर सबसे जघन्य बादर निगोद द्रव्य वर्गणा होती है। शंका, वह कहां दिखाई देती है? समाधान, क्षीण कषाय के अंतिम समय में। देखो, पहले भी ये जो वर्गणा हम पढ़ते थे, नाम हम बहुत बार देखे थे, तो ऐसा लगता कि निगोद जीवों को बादर निगोद वर्गणा है और प्रत्येक शरीरी वालों को प्रत्येक शरीर वर्गणा है। परंतु ऐसा भी ख्याल आ गया कि जिस शरीर के आधार से बादर निगोद है उसको बादर निगोद वर्गणा कहा, यानी वो क्षीण कषाय के अंतिम समय तक है वहां बादर जीव, इसलिए वहां तक के जो औदारिक तेजस कारमान का जो समूह है उसको बादर निगोद वर्गणा कहेंगे। पढ़ेंगे, देखो, वह कहां दिखाई देती है? क्षीण कषाय के अंतिम समय में। किस प्रकार के क्षीण कषाय में होती है ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं, क्योंकि वो मिनिमम चाहिए ना हमको, कम से कम चाहिए। जो जीव क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अनंतर गर्भ से लेकर 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त का होने पर सम्यक और संयम को युगोपत ग्रहण करके पुनः कुछ कम पूर्व कोटि काल तक, अभी वो इमीडिएट सहयोगी नहीं हुआ है, कुछ कम पूर्व कोटि काल तक कर्म की उत्कृष्ट गुणश्रेणी निर्जरा करके सिद्ध होने के लिए अंतर्मूर्त काल अवशेष रहने पर क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया, यानी वो मैक्सिमम पॉसिबल काल उसने संयम अवस्था में बिताया। अनंतर क्षपक श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा कर्म निर्जरा करके क्षीण कषाय हुए इस जीव के प्रथम समय में अनंत बादर निगोद जीव मरते हैं, दूसरे समय में विशेष अधिक जीव मरते हैं। कितने विशेष अधिक मरते हैं? प्रथम समय में मरे हुए जीवों के प्रमाण में आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतने विशेष अधिक जीव मरते हैं, यानी असंख्यातवा भाग अधिक। देखो, हाँ, ऐसे ही समझो, पहले समय में कितने मरे? पहले समय में अनंत मरे, दूसरे समय में उसका अनंत का असंख्यातवा भाग उसी में मिला दो, उतने अधिक, उतने मरे असंख्यातवा भाग, आवली के असंख्यातवा भाग का भाग देना। पहले समय में अनंत मरे, उस अनंत को आवली के असंख्यातवा भाग का भाग देना, जो भाग भागाकार आएगा ना, अनंत को असंख्यात का भाग दिया फिर भी अनंत ही आए, फिर भी उसको विशेष अधिक में जाने जाएंगे। संख्या आएगी, हाँ, अनंत में ही होगा, वो मूल में फिर मिला देना। बिल्कुल, हाँ, पर वो ओरिजिनल अनंत का वो असंख्यातवा भाग है ना, बड़ी है, अनंत है, डबल नहीं कह सकते। ऐसी बात है, असंख्यात भाग से अधिक जाते हैं, हर समय में अनंत जाते हैं। इसी प्रकार तीसरे आदि समयों में विशेष अधिक जीव मरते, विशेष अधिक कहा ना, परंतु ओरिजिनल अनंत है तो उसमें विशेष अधिक यानी अनंत ही मरेंगे। यह क्रम क्षीण कषाय के प्रथम समय से लेकर आवली पृथक्त्व काल तक चालू रहता है। इसके आगे कुछ आवली, हाँ, अभी उसके संख्या मत देना, क्योंकि पृथक्त्व का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इसके आगे संख्यात्वा भाग अधिक मरते हैं। पहले से ज्यादा मर रहे कि कम मर रहे? पहले असंख्यात्वा भाग से अधिक था, अभी संख्यात्वा भाग अधिक यानी ज्यादा है। हाँ 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 इतने अनंत पहले क्या होता था, हमारे में भी इतने अनंत मर रहे मान लेते, परंतु उतने अनंत जन्म ले रहे हर समय। और यह क्रम क्षीण कषाय के काल में आवली का असंख्यात्वा भाग काल शेष रहने तक चालू रहता है। इसके आगे के लगे हुए समय में असंख्यात गुणे जीव मरते कितने? देखो पहले असंख्यात्वा भाग अधिक, फिर संख्यात्वा भाग अधिक, अभी अवली का असंख्यात्वा भाग शेष रहा, तो असंख्यात गुणा, पहले में जो अनंत थे उसे असंख्यात गुणा। इस प्रकार क्षीण कषाय के अंतिम समय तक असंख्यात गुणे जीव मरते हैं। गुणकार सर्वत्र पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण है। विशेषाधिक मरने के अंतिम समय में मरने वाले जीवों के प्रमाण को, यानी जो वहां का प्रमाण था ना विशेषाधिक करके एक लिमिट तक पहुंच के, उस प्रमाण को अभी गुणा करना, असंख्यात गुणा करना। तो विशेषाधिक मरने के अंतिम समय में मरने वाले जीवों के प्रमाण को तत्प्रायोग्य पल्योपम के असंख्यात्वे भाग से गुणित करने पर गुणश्रेणी क्रम से मरने के प्रथम समय में मरे हुए जीवों का प्रमाण होता है। गुणश्रेणी क्योंकि हर समय असंख्यात गुणा, उसको भी गुणश्रेणी रूप से मरने वाले जीव कहा। ये कर्मों की गुणश्रेणी होती है, उससे कुछ संबंध नहीं है यहाँ पर। जब आवली का असंख्यात्वा भाग शेष रहा तब विशेष अधिक प्रमाण अभी नष्ट होकर कैसे असंख्यात गुणा वाला प्रमाण चालू हो जाएगा? तो पल्ले का जो असंख्यात भाग गुणा, अभी जितने मरे उसको फिर पल्ले का असंख्यात भाग गुणा करो, फिर पल्ले के असंख्यात विभाग गुणा करो, इस तरह से चलेगा। इसी प्रकार आगे भी क्षीण कषाय के अंतिम समय तक जानकर कथन करना चाहिए। यह गुणकार प्रत्येक समय में मरने वाले जीवों का ही कहना चाहिए, पुलवी जीवों का नहीं, यानी वो जीवों की बात है, पुलवियों की नहीं। हम कहीं थे ये पहले सुना है कभी, स्कंद अंडर आवास पुलवी वगैरह वगैरह, पांच अलग अलग भेद होते हैं। अच्छा अभी ये कहेंगे। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, आगे कहे जाने वाले चूलिका के क्षीण कषाय चरिम समय आवलियाय असंख्य जदि भात मेत्त निगोदानम, इस सूत्र से जाना जाता है। शंका, निगोद किने कहते हैं? कहते पुलवियों को निगोद कहते हैं। अब यहां पर पुलवियों के स्वरूप का कथन करते हैं। यथा जीवों का, तो एक पुलवी में अनंत जीव होते, निगोद शरीर होते हैं, और एक एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, जीवों की बात है यहाँ, यानी कितने शरीर निकल जाते उसकी बात नहीं है, कितने जीव निकल जाते उसकी बात है। अब यहाँ पर पुलवियों के स्वरूप का कथन करते, यथा स्कंध अंडर आवास पुलवी और निगोद शरीर, ये पांच होते हैं। क्या कहना, जैसे हमने एक बटाटा लिया तो एक स्कंद हुआ ना, वो तो उसको स्कंद कहेंगे। अब उसके भाग ऐसे करने, जैसे यहां पर उदाहरण दिया पूरा एक देश, अभी भारत देश लेंगे हम, तो भारत के फिर वो हम प्रांत वाइज उसके अलग अलग टुकड़े करेंगे, हिस्सों में बट देंगे, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उधर दिल्ली है, यूपी है, जो कुछ है, फिर उसमें भी शहरों में विभाजित करेंगे, शहरों में भी, फिर अभी ये बम्बई है तो उसमें भी वो सायन है, दादर है, अलग अलग एरियाज है, उसमें भी छोटे छोटे गली है या घर है, ये जैसे उसके एक के अलग अलग छोटे छोटे हिस्से करते हैं, वैसे यहाँ भी स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और निगोद शरीर, ये पांच होते हैं। यानी स्कंद टोटल कितने हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद है, तो उसमें अंडर कितने हैं, तो एक एक में, एक स्कंद में अंडर असंख्यात लोक है, एक अंडर में आवास असंख्यात लोक है, एक आवास में पुलवी जो है असंख्यात लोक प्रमाण है, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है, और एक एक शरीर में अनंत जीव है, कितने सिद्धों से अनंत गुणे। देखो उनमें से जो बादर निगोदों का आश्रयभूत है, बहुत वक्खारों से युक्त है, तथा बलजंत वाणी कच्छगुड़ समान है, ऐसे मूली, थुअर और आद्रक आदि संज्ञा को धारण करने वाला स्कंद कहलाता है। मूली है, अदरक है, ये थुअर है, थोर कहते हैं ना, हाँ, कैक्टस, वे स्कंद असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। ये स्कंद जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव असंख्यात लोक प्रमाण पाए जाते हैं। जो उन स्कंदों के अवयव हैं और जो वलंजु कच्छगुड़ के पूर्वापर भाग के समान है, उन्हें अंडर कहते हैं। अब यहाँ जो उन्होंने उदाहरण दिया है वो अपने समझ में नहीं आता है। जो अंडर के भीतर स्थित है, अभी उसमें ये जो देश का उदाहरण वो लागू होता है, अन्य भी जो कुछ, जैसे अब एक शरीर है उसके अवयव है, अवयव में छोटे अवयव है, उसमें फिर वो तो हाथ के ऊपर रेखाएं हैं, इस देश का भी उसमें होता है, या शरीर को जिसको फिजियोलॉजी का नॉलेज है, तो हम कहेंगे ये इतना शरीर है, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स है, फेफड़े है, वो तो हार्ट है, वो लिवर है, जो कुछ है, फिर उसके ही अंदर वो टिश्यूज अलग होते हैं, टिश्यूज में वो सेल्स अलग होते हैं, इस तरह से उसका हम डिवाइड कर सकते हैं। ये तो उदाहरण दृष्टांत, तो जो स्कंद असंख्यात लोक प्रमाण है, पांचवी लाइन हमने पढ़ी, बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव असंख्यात लोक प्रमाण पाए जाते हैं, जो उन स्कंदों के अवयव है और जो वलंजु कच्छगुड़ के पूर्वापर भाग के समान है, उन्हें अंडर कहते हैं। यानी स्कंद के जो भेद है उसको अंडर कहेंगे। अरविंद भाई पूछते, बादर निगोद प्रतिष्ठित यानी प्रत्येक वनस्पति है क्या, या औदारिक शरीर को भी कहेंगे? जो अंडर के भीतर स्थित है, तथा कच्छ उड़ अंडर के भीतर स्थित वक्खार के समान है, उन्हें आवास कहते हैं। अंडर असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, तथा एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं। यह हर एक का असंख्यात लोक प्रमाण, स्कंद असंख्यात लोक प्रमाण, एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, मल्टीप्लाई करते जाना उसको, तो टोटल संख्या आएगी लास्ट में। जो आवास के भीतर स्थित है और जो कच्छगुड़ अंडर वखार के भीतर स्थित पिशवियों के समान है, ये मराठी शब्द आया, थैली को पिशवी कहते हैं, छोटी छोटी थैलियां, उन्हें पुलवी कहते हैं। एक एक आवास में वे असंख्यात लोक प्रमाण होती हैं, तथा एक एक आवास की अलग अलग एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं। जो कि औदारिक तेजस और कार्मण पुद्गलों के उपादान कारण होते हैं। ये इन शरीरों के लिए ना है ना, औदारिक तेजस कार्मण पुद्गलों के। और जो कच्छ उड़ अंडर वखार पुलवी के भीतर स्थित द्रव्यों के समान अलग अलग अनंतानंत निगोद जीवों से आपूर्ण होते हैं, आपूर्ण ने परिपूर्ण होते हैं। अथवा अभी दूसरा उदाहरण यहां उन्होंने दिया है, तीन लोक, स्कंद के जगह तीन लोक लिया, उसमें भरत क्षेत्र जो उसको भरत कहा, फिर जनपद यानी जो प्रांत है, ग्राम गांव, और पुर के समान स्कंद अंडर आवास पुलवी और शरीर होते हैं, ऐसे यहां ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ग्राम और पुर, पुलवी पिशवी क्या है ना यहाँ पर, निगोद शरीरों का समूह उसको पुलवी कहा। देखो पहले ये शब्द आए थे ना, यहाँ पुलवियों को नहीं समझना कि जीवों को समझना चाहिए। गुणकार प्रत्येक समय में मरने वाले जीवों का ही कहना चाहिए, पुलवी जीवों का नहीं। यानी एक पुलवी में कितने वो नहीं लेना, कितने जीव है टोटल उसको लेना। पुनः यहां पर क्षीण कषाय जीव के शरीर की स्कंद संज्ञा है लिखा ना, अभी हमारा आपका शरीर उसको भी स्कंद कहेंगे। एक बंधन में बंधा हुआ है ना ये पूरा ही, ऐसे वो प्रत्येक शरीर प्रत्येक वनस्पति कायिकाओं का भी एक स्कंद कहलाएगा। अभी उसके आधार से जहां निगोद होगे तो उसको भी कहेंगे स्कंद। हाँ, क्योंकि वह असंख्यात लोक प्रमाण अंडरों का आधारभूत है। वहां अंडरों के भीतर स्थित हुए अनंतानंत जीवों में से शुक्ल ध्यान के द्वारा प्रति समय असंख्यात गुणे स के ऊपर बिंदी श्रेणी रूप से जीवों के मरने पर क्षीण कषाय के अंतिम समय में मरने वाले जीव अनंत होते हैं। क्योंकि वो असंख्यात गुणा 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 करके है ना, तो लास्ट में जो कोई लौट है वो पूरा का पूरा। इतने होते हुए भी पहले द्विचरम समय में मरने वाले जीवों से असंख्यात गुणे होते हैं। अभी हमने पहले देखा था, हर समय असंख्यात गुणा होता है। गुणकार क्या है? पल्लोपम का असंख्यात भाग गुणकार है। बड़ी लंबी चौड़ी शंका ही है, कल लेना है कि इसको। हाँ, क्योंकि वो शंका भी आधी हो जाएगी, हेवी हो गया। हाँ। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। अश्विन भाई।